नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तिरुवनंतपुरम में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। केरल में रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए 3 अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सरकार ने इस वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होने वाली जनगणना के प्रथम चरण में नागरिकों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची जारी की। केंद्र सरकार का नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती पर आज से पराक्रम दिवस का आयोजन। यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस, अमेरिका और यूक्रेन की पहली त्रिपक्षीय बैठक आज संयुक्त अरब अमीरात में होगी। बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का त्योहार आज देश के विभिन्न हिस्सों में मनाया जा रहा है और कश्मीर घाटी के गुलमर्ग और कुछ अन्य क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी तिरुवनंतपुरम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में रेल संपर्क, शहरी आजीविका मिशन, विज्ञान और नवाचार, नागरिक केंद्रीय सेवाएं और उन्नत स्वास्थ्य सेवा सहित प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं। ये समावेशी विकास, तकनीकी उन्नति और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार पर प्रधानमंत्री के निरंतर समर्थन को दर्शाती हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नई रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 1 यात्री रेलगाड़ी शामिल है। प्रधानमंत्री नागरकोइल मंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस, तिरुवनंतपुरम तंबरम अमृत भारत एक्सप्रेस, तिरुवनंतपुरम चारलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस तथा त्रिशूर और गुरुवायूर के बीच एक नई यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री शहरी आजीविका मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे। श्री मोदी केरल के 1,00,000 लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि ऋण भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम में विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में CSIR NIIST नवाचार प्रौद्योगिकी और उद्यमिता केंद्र का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम के श्री चित्रा तिरुनल आयुर्वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में अत्याधुनिक रेडियो सर्जरी केंद्र की भी आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी तिरुवनंतपुरम में नए पुज्जुपुरा मुख्य डाक घर का भी उद्घाटन करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
प्रधानमंत्री मोदी आज तमिलनाडु में चेन्नई के पास मधुरंथगम में एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा से फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने भारत ब्राजील महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने तथा आने वाले वर्षों में इसे अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने साझा चुनौतियों से निपटने में बहुपक्षवाद के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि ब्राजील के राष्ट्रपति शीघ्र ही भारत आएंगे। सरकार ने जनगणना के पहले चरण के दौरान नागरिकों से पूछे जाने वाले 33 प्रश्नों की सूची जारी कर दी है। ये चरण 1 अप्रैल से शुरू होगा। पहले चरण में घरों की सूची तैयार की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की ओर से निर्धारित 30 दिन की अवधि में अभियान चलाया जाएगा। ये चरण 30 सितंबर तक जारी रहेगा। एक रिपोर्ट।
सर्वेक्षण के दौरान जनगणना अधिकारी घर के स्वामित्व की स्थिति, घर के उपयोग, कमरों की संख्या तथा परिवार के मुखिया के लिंग के बारे में जानकारी मांगेंगे। नागरिकों से उनके घरों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं के बारे में भी पूछा जाएगा। इनमें लोगों से पीने के पानी का मुख्य स्रोत, रोशनी का मुख्य स्रोत, शौचालय की उपलब्धता, LPG और PNG कनेक्शन तथा खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले ईंधन के बारे में भी जानकारी एकत्र की जाएगी। नागरिकों के पास 30 दिन के गृह सूचीकरण अभियान शुरू होने से ठीक पहले 15 दिन की अवधि में स्वगणना करने का विकल्प भी उपलब्ध होगा। जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। अप्रैल से सितंबर तक घरों का सूचीकरण और आवास जनगणना तथा फरवरी 2027 में व्यक्तियों की गणना होगी।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पूरी दुनिया भारत को एक विश्वसनीय और मूल्यवान भागीदार के साथ ही एक जीवंत लोकतंत्र तथा समावेशी विकास पर केंद्रित देश के रूप में देख रही है। स्विट्जरलैंड के दावोस में एक साक्षात्कार में श्री वैष्णव ने कहा कि लोग भारत पर एक ऐसे देश के रूप में भरोसा करते हैं जिसके साथ वे सह निर्माण और नई प्रौद्योगिकियों का विकास कर सकते हैं। श्री वैष्णव ने बताया कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के सभी 5 स्तरों पर काम कर रहा है। इनमें एआई आर्किटेक्चर, अनुप्रयोग, मॉडल, चिप, बुनियादी ढांचा और ऊर्जा शामिल हैं। अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट के बारे में उन्होंने कहा कि एआई में अपार क्षमताएं हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि इन नुकसानों को नियंत्रित करने के लिए उचित सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार द्वारा अनुमोदित 10 सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण संयंत्रों में से 4 संयंत्रों ने हाल ही में प्रायोगिक उत्पादन शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है और पहले खंड का निर्माण इस वर्ष दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत में ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन से औद्योगिकरण, रोजगार सृजन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल रहा है, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक उदाहरण है। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच में ऊर्जा पर एक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने स्वच्छ ऊर्जा को जन केंद्रित विकास आंदोलन में बदलने के साथ ही ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत और बिजली की लागत को कम किया है। प्रधानमंत्री के सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के प्रमुख मंच प्रगति ने अपनी 50वीं सफल बैठक के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल को वर्ष 2015 में शुरू किया था। ये केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारों को एक ही डिजिटल मंच पर साथ लाता है। प्रगति ने एक दशक से अधिक समय से निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करने, प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं में देरी के कारणों का समाधान करने और जवाबदेही मजबूत संस्कृति को बढ़ाने में सहायक हुई है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम जयपुर सीकर चूरू गेज रूपांतरण परियोजना पर एक नजर डाल रहे हैं।
जयपुर सीकर चूरू गेज परिवर्तन परियोजना राजस्थान की एक महत्वपूर्ण रेल अवसंरचना परियोजना है। इसे उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा रेल मंत्रालय की देखरेख में लागू किया गया। इस परियोजना के तहत लगभग 320 किलोमीटर लंबे पुराने मीटर गेज रेल मार्ग को ब्रॉड गेज में बदला गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 1,222 करोड़ रुपए थी। यह कार्य चरणों में पूरा किया गया और 25 अप्रैल 2019 को गेज परिवर्तन के बाद यह पूरा रेल मार्ग देश के ब्रॉड गेज नेटवर्क से जुड़ गया। इस परियोजना की समीक्षा 28 सितंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक के दौरान की। इस पर प्रधानमंत्री ने रेल मंत्रालय, राजस्थान सरकार और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को मिलकर इन समस्याओं को जल्द सुलझाने के निर्देश दिए। दिसंबर 2016 तक निर्माण कार्य बिना किसी रुकावट के चला और वन विभाग से जुड़ी सभी समस्याएं भी समाप्त हो गई। अप्रैल 2019 में जयपुर सीकर चुरू ब्रॉड गेज रेल मार्ग सफलतापूर्वक शुरू हो गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
संस्कृति मंत्रालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती के उपलक्ष में आज से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पराक्रम दिवस का आयोजन कर रहा है। एक रिपोर्ट।
संस्कृति मंत्रालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती के उपलक्ष में आज से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पराक्रम दिवस का आयोजन कर रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और विरासत से जुड़े देश के 13 अन्य स्थानों पर भी ये उत्सव मनाया जाएगा। ये उत्सव उनके साहस और बलिदान और देशभक्ति की अमर विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मंत्रालय ने बताया कि इस उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा एक नाटक की प्रस्तुति शामिल है। ये उत्सव 25 तारीख तक चलेगा। समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। वायुसेना इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में रक्षा बलों का नेतृत्व करेगी। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह निदेशालय के एयर कमोडोर इमरान जैदी ने कहा कि वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर हेमंत सिंह कन्यार श्रद्धांजलि समारोह का नेतृत्व करेंगे। देश के विभिन्न हिस्सों में आज बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का त्यौहार धार्मिक और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन ज्ञान, विद्या और कला की देवी मां सरस्वती के प्राकट्य दिवस के रूप में विशेष महत्व रखता है।
वसंत पंचमी के अवसर पर शिक्षण संस्थानों, मंदिरों और घरों में विशेष सरस्वती पूजा, पुस्तक पूजन और विद्यारंभ संस्कार किए जाते हैं। श्रद्धालु आज पीले वस्त्र धारण कर देवी को पीले पुष्प और नैवेद्य तथा खिचड़ी अर्पित करते हैं। पूजा पाठ, मंत्र जाप और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से इस पर्व को मनाया जाता है। इस समय चारों ओर बिखरे पीले सरसों के फूल और प्रकृति का नया श्रृंगार वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक भी माना जाता है। समाचार कक्ष से मैं गणेश हेगड़े।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन, अमेरिका और रूस आज से दो दिन की बैठक में भाग लेंगे। वर्ष 2022 में यूक्रेन और रूस के बीच शुरू हुए संघर्ष को समाप्त करने के लिए पहली बार तीनों देशों के प्रतिनिधि आज और कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी में त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच के अवसर पर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक के बाद ये जानकारी दी। कश्मीर घाटी के गुलमर्ग और कुछ अन्य इलाकों में बर्फबारी हुई है। श्रीनगर के मैदानी इलाकों में तेज हवाएं भी चली हैं। जम्मू कश्मीर में पश्चिमी गड़बड़ी के कारण बारामूला जिले के गुलमर्ग में कल शाम बर्फबारी हुई। अन्य क्षेत्रों में विशेष रूप से ऊंचाई वाले इलाकों कुपवाड़ा, बारामूला और शोपियां में भी बर्फबारी हुई। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के पानीचाफोन तीरा रत्सकुल से होगा और पीवी सिंधु का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की चेन यूफी से होगा। इस बीच किदांबी श्रीकांत और पुरुष डबल्स जोड़ी हरिहरन आमस्कारुन और एमआर अर्जुन टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
धन्यवाद मुकेश। ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय देशों पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने का निर्णय वापस लेने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है ईयू की सख्ती के बाद ट्रंप पलटे। पंजाब केसरी का शीर्षक है घमासान के बीच ट्रंप का यू टर्न। राजस्थान पत्रिका ने आतंक का अंत शीर्षक से लिखा है झारखंड में 1 करोड़ का इनामी सहित 15 नक्सली ढेर, सारंडा जंगल में हुई मुठभेड़। दैनिक जागरण की सुर्खी है 400 फीट गहरी खाई में गिरा सैन्य वाहन, 10 बलिदान। अमर उजाला के अनुसार 11 घायल, सैन्य वाहन में 4 राष्ट्रीय राइफल्स के 21 जवान थे। जनसत्ता ने त्रासद हादसा शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कल डोडा में सेना के बुलेट प्रूफ वाहन में सवार फौजी लगभग 9000 फुट ऊंचाई पर स्थित एक चौकी की ओर जा रहे थे। इस बीच खन्नी टॉप के पास वाहन फिसलकर गहरी खाई में जा गिरा। यह हादसा बेहद मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। हादसों पर लगाम के लिए इलाके में तैनात जवानों को खराब मौसम और परिस्थिति के अनुसार बेहतर प्रशिक्षण तथा वाहनों के रखरखाव पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। देशबंधु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रमुखता से देते हुए लिखा है हर क्षेत्र में रिकॉर्ड बना रही भारत की बेटियां। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है राज्यों की जीडीपी बढ़ने के बाद भी घट रहा आयकर। पत्र के अनुसार जॉब बढ़े, टैक्स नहीं। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार गजा में शांति के लिए ट्रंप ने पीस बोर्ड का किया अनावरण, भारत रहा गैर हाजिर। नवभारत टाइम्स के अनुसार इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में आसमान में दिखेगा सिंदूर फॉर्मेशन। पाकिस्तान आतंकी ठिकानों पर कहर बरपाने वाले फाइटर जेट भी कर्तव्य पथ पर उड़ान भरेंगे।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तिरुवनंतपुरम में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। केरल में रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए 3 अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सरकार ने इस वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होने वाली जनगणना के प्रथम चरण में नागरिकों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची जारी की। केंद्र सरकार का नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती पर आज से पराक्रम दिवस का आयोजन। यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस, अमेरिका और यूक्रेन की पहली त्रिपक्षीय बैठक आज संयुक्त अरब अमीरात में होगी। बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का त्यौहार आज देश के विभिन्न हिस्सों में मनाया जा रहा है और कश्मीर घाटी के गुलमर्ग और कुछ अन्य क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।